وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اسی طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ یہ ہے ایک خوبصورت کردار۔ ماں باپ کا حق ساری زندگی بھی دیتے رہے تو پورا نہیں ہوتا، لیکن یہاں خاص طور پہ بلغ 40 سنہ کی بات ہے، 40 سال کی عمر۔ آپ دیکھیے کہ 40 سال کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے جس میں بندہ دو نسلوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اپنے ماں باپ بھی ابھی زندہ ہوتے ہیں عموماً الا ماشاء اللہ، اور آگے سے اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ خالی ماں باپ کو خوش رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور صرف اولاد کو خوش رکھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں آتا ہے کہ جہاں اولاد اور ماں باپ دونوں کے حقوق کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، وہ مسئلہ مشکل ہوتا ہے۔ اس ایک دعا میں خوبصورتی کے ساتھ دیکھیے گا، اور وہ کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں ایک بندہ جس بات کا اقرار کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو مجھ پہ اور میرے ماں باپ پہ ہیں، اور مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ دعا ہے جس میں ماں باپ اور اولاد دونوں کی دعا اکٹھی ہے۔ عموماً آپ کہتے ہیں نیک اولاد کی دعائیں یا اچھے ماں باپ کے لیے دعائیں، تو اس میں دونوں چیزیں۔ یہ دعا آپ کی میری زبان پہ عام رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں رکھ کر ہمیں بھی ایک بار احساس دلا دیا میرا اپنے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ دیکھیے پیچھے بھی بات ہوئی سورہ بنی اسرائیل میں، رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ، یہاں دوبارہ اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ جوان ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، ہمیں ان سے بہت کچھ لینا دینا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ کمزور ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، آپ دیکھیے ان کی ہر خوبی کم کیا ہوتی ہے، حتیٰ کہ شکل و صورت بھی بگڑ جاتی ہے، جھریوں بڑا چہرہ، چل نہیں سکتے، سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں مشکل۔ جس طرح ظاہری خوبصورتی کم ہو جاتی ہے نا تو ذرا سی عقل بھی کم ہونے لگتی ہے، بعض بولنے شروع ہو جاتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں، ایک ایک بات کو 10-10 بار کہیں گے، کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہاں ماں کے ان دردوں کی بات ہے، حملت امہ کرہن وبدت کرہن، یہ آیت نہ ہوتی تو کوئی مرد نہ مانتا کہ بچے کی ڈیلیوری کی یا پریگنینسی میں کچھ دردیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ نے جب کہہ دیا کرہن الا کر تو پھر یہ ہے تکلیف، اور آپ کہتے 10 شاید ہارٹ اٹیک اکٹھے ہوں کسی کو، اس سے زیادہ ڈیلیوری کی پین ہوتی ہے جس سے بچہ ڈیلیور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، تو ماں باپ کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے لیے شکر گزار رہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اب یہ تو ایک خوبصورت کردار ہے، تو یہ آج کی ہماری دعا بھی ہے۔ آپ نے شعور سے مانگنی ہے، ماں باپ زندہ ہے، ماں باپ زندہ نہیں ہے، آپ ان کے لیے اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کو بولنا ہی نہیں آتا، اپنے ماں باپ کے سامنے گونگے بن جائیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کانوں کو خوب کھلا سننے والا کر دیں، کہ وہ وسپر بھی کریں، ہلکی سی بات بھی کریں تو آپ سن لیں، اور اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کو بے وقوف سمجھیں، اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھ لیں آپ کو لگے کہ میں وہی چھوٹا سا بچہ اور بچی ہوں جو کہ میں بچپن میں تھا اور وہ میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے دل میں فطری طور پہ یہ جذبے نہیں آتے تو پوز کریں، دھوکہ دیں خود کو۔ یہ جو باتیں ہوں گی نا، آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے دل میں اور محبت آئے گی۔ فطری محبت کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، کبھی عادتوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ برداشت کر کے آپ اگر اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس سے اجر بھی زیادہ ملے گا۔ उन बच्चों के लिए अपने माँ बाप की खिदमत और उनके लिए दुआएं करना और उनकी बात मानना बहुत आसान है कि जहाँ अंडरस्टैंडिंग हो, जहाँ जहन मिलते हो, जहाँ बहुत ही दोस्ताना माहौल हो, बेतकल्लुफी भी बहुत हो, ये तो आसान है। मुश्किल उनके लिए होती है कि जहाँ वेवलेंथ नहीं मिलती, जहाँ बात कोई सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो फिर कम से कम अपने ऊपर ऊंची नहीं बोलना, बदतमीजी नहीं करनी। अगली आयत में देखिए, एक बदतमीज औलाद का नक्शा खींचा जाता है। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ना करे और किसी की औलाद को भी ऐसा ना करे। फरमाया आयत 17, वल्लज़ी काल अली वालिदैही उफ़्फ़िल लकुमा, और जिस शख्स ने अपने वालदैन से कहा उफ़ तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊंगा? हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, इनमें से तो कोई उठकर ना आया। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है, मगर वो कहता है ये सब पिछले वक्तों की कहानियां हैं। ये लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चिस्पा हो चुका है, इनसे पहले जिन और इंसानों के जो टोले इसी की माश के होकर गुजरे हैं, इन्हीं में ये भी जा शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं, दोनों गिरोहों में से हर एक के दर्जे इनके आमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह इनके किए का पूरा पूरा बदला इनको दे, इन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर जब ये काफिर आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे, तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और इनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकबर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, इनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। यहाँ पे बात पूरी होती है, तो क्या पता चला कि जब औलादें मुंह को आ जाएं, जब आगे औलादें इस तरह की बदतमीजियां करें, तो माँ बाप फिर दुहाइयां ही देते रह जाते हैं। कभी अपने माँ बाप की आह ना लें, जितना सब्र कर सकते हैं कर जाएं, मत बोले, कोई जरूरी तो नहीं हर बात का जवाब देना। 100% गलत बात कह रहे हैं वो, 100% आप खामोश रहें। वो गीबत करें आपके सामने, प्यार से उनको बता दें कि मामा ऐसे नहीं करते, बाबा ऐसे नहीं करते, वो हक तलफी कर रहे हैं, लेकिन नहीं जो करना वो क्या कि आपने उनके आगे चीखना नहीं है। उफ से भी हल्का कोई लफ्ज होता तो मुफस्सरीन कहते हैं कि अल्लाह ताला वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब आप जरा उस चीज को और अब आज के दौर पे अमूमी तौर पे जो तरबियत के अंदाज है उसको सामने रखें, देखिए फिर इसमें गलती माँ बाप की निकलेगी। बचपन से छोटा बच्चा चीख के माँ को बुलाता है, नहीं बुलाना चाहिए। घर के बड़े, खासतौर पे अगर शौहर है, वो समझाएं, बेटा माँ से ऐसे बात नहीं करते। बापों से बच्चे जरा दबते हैं अमूमन, माओ की तो मैं कहती हूँ ऐसी बेइज्जती करते हैं। हदीस में आता है क्यामत के करीब क्या हालात होंगे, लौंडी अपने आका को जनेगी। सहाबा को समझ ही नहीं आया, भाई लौंडी ने अगर किसी को जन्म दे दिया तो फिर वो उसका आका कैसे बन गया, मालिक कैसे बन गया? का औलादें इतनी नाफरमान होंगी कि अपने माँ बाप से ऐसे ट्रीट करेंगी जैसे कोई आका अपनी लौंडी को ट्रीट करता है। याद रखिए, बच्चों के अंदर आजजी भी लाना हमारा ही काम होता है, उनको बोलना सिखाना हमने, चलना सिखाना हमने। जितने मर्जी बुरे माहौल में बच्चे रहे, अगर माँ और बाप शऊर के साथ दीन को सामने रखते हुए अगर अपने बच्चों को पालते हैं ना, तो उन बच्चों में आजजी होती है। और ये भी लिख लें, जितना वो अल्लाह से करीब होंगे आपके भी करीब होंगे। मैं कहती हूँ माँ बाप की कदर तो आई ही कुरान पढ़ने के बाद है, जब तक वो खुद कहते रह गए हमारी कदर करो करो, बहुत थोड़ों को उनकी कदर करते देखा, और जब उन्हीं औलादों के हाथों में कुरान आए तो फिर रोते हैं कि हम करते क्या थे और हम बोलते कैसे थे और हम सोचते कैसे थे। तो अपनी औलादों को जब हम अल्लाह से जोड़ते हैं, इंशाल्लाह वो हमसे भी जुड़ेंगी। फिर एक और छोटी सी बात भी समझिए कि बास दफ़ा होता ये है, जो इख्तलाफात होते हैं ना बच्चों के, खासतौर पे ये 40 ईयर्स की जो एज है उसमें बता रही हूँ, माँ बाप ये सोचने लग जाते हैं कि अब ये हमारे बच्चे हमसे उतनी ही मोहब्बत करें जितनी अपने बच्चों से करते हैं या बीवी से करते हैं। ये नहीं होगा। मान लीजिए आप अपने ऊपर लें, आपको दिल पे हाथ रखें, आप जज्बाती होके कहेंगे तो सभी कह देंगे, लेकिन आम तौर पे देखिए इंसान को अपनी औलाद से अपने माँ बाप की निस्बत ज्यादा प्यार होता है। तभी तो बेटियां कई कई दिन फोन ही नहीं करती, वो अम्मी मसरूफ हो गई थी, वो बेबी हो गया, ये हो गया, फितरी सी बात है। चॉइस और दोनों में से किसको लेना है, एक मिलनी है चीज तो औलाद लेंगे आप। बस आपको जैसे अपनी औलाद से प्यार है ना, आपके बच्चों को भी अब अपने बच्चों से प्यार होगा। तो लिहाजा बुढ़ापे में या जवान औलाद साथ रहती हैं, साथ वाले घर में रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं, इतना ना मजबूर करें कि वो फिर बेटे बेचारे गुनाहगार ही होते रहें और बेटियां अपने घर में जाकर भी माँ बाप की खिदमत के गम में पड़ी रहे। उनको थोड़ा सा टाइम दें, उनको रिलैक्स करें। हमारे अल्लाह रहम करे देसी कल्चर में तो बहुओं को तो फिर कहते हैं ना, अब सारे अपनी सास के भी बदले मैंने इससे लेने हैं, जो मेरी सास मेरे साथ करती थी मैंने अब इसके साथ करना। उल्टी बात हो गई कि मैंने वो नहीं करना। और मैंने दो तरह के किरदार देखे हैं, कुछ कहते हैं मैंने अपनी बहू को अलग रखना है, मैंने अपनी बहू से बड़ा अच्छा रहना है, क्यों, क्योंकि मैंने बड़े मुश्किल वक्त गुजारे हैं। और बात कहती लो हमने नहीं भुगता, ये क्यों नहीं भुगतती, हम नहीं रहे ये क्यों नहीं रहती। तो ये आपका मेरा नसीब है। एक बात पे दिल जम जाता है, जो आज किसी के साथ करेंगे कल भुगतेंगे, या दुनिया में कोई हमारी औलादों में से भुगत लेगा या फिर आखिरत में भुगतना है। तो ना जुल्म करें ना सहें, ना किसी के साथ ज्यादती करें और ना ज्यादती बर्दाश्त करें। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रिश्तों की अदालत में सुरखरू कर दे। मुझे ऐसे लगता है क़यामत के दिन जिस पर्चे में ज्यादा लोगों ने फेल होना है ना, वो मामलात और रिश्तों का पेपर है। जैसे अक्सर लोगों की सप्ली आती है तो मैथमेटिक्स में आती है, किसी की इंग्लिश में आ जाती थी, यानी हमेशा दो तीन मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं ना। क़यामत के दिन की पकड़ में सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर मामलात का है। और ये पूरा पारा आपको मुझे एक ऐसा किरदार दे रहा है कि अपने आप को दूसरों के लिए खुशी का जरिया बनाए, सुकून का जरिया बनाए, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अब सूरत का नाम अलअहकाफ है, तो असल में ये कौम आद का दूसरा नाम है। इसी तरह अब उनका तस्करा आ रहा है, आयत नंबर 21। वज़्कुरखा आदिन, जरा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि इसने अहकाफ में अपनी कौम को खबरदार किया। अहकाफ कहते हैं टीलों को, रेत के जो छोटे छोटे टीले होते हैं ना, उसकी तरफ, ये इस कौम के घरों की तरफ इशारा है। और ऐसे खबरदार करने वाले इससे पहले भी गुजर चुके हैं और इसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा क्या तो इसलिए आया कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बदगुमान कर दे। अच्छा तो ले अपना वो अजाब जिससे तू हमको डराता है, अगर तू वाकई सच है। इसने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह को है और मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम जहालत बरत रहे हो। फलम्मा रौहु आरिदा, फिर जब उन्होंने इस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे ये बादल है जो हमको सैराब करेगा, नहीं बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार इनका हाल ये हुआ कि इनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ नजर नहीं आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं, इनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया, यानी उनकी तरक्की आज के लोगों की तरक्की से ज्यादा थी। इनको हमने कान आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर ना वो कान उनके किसी काम आए, ना आंखें ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और इसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। आप देखिए कि इसमें भी आपके मेरे लिए अमल का एक नुक्ता है कि अल्लाह तला की पकड़ कौमों पे कब आती है, जब वो अपने कानों आंखों और दिल से वो काम नहीं लेते जिसके करने का हुक्म दिया है। आप आगे भी देखेंगे इस बारे में इन तीनों की बहुत बात होगी। जिस्म के सारे ही अज़ा का हिसाब होगा जो इंसान के कंट्रोल में, मसलन आप देखिए ना मैदा है, अब मैदे का क्या हिसाब अल्लाह ले, वो मजबूर है, आपने डाल दिया, जुबान से गया, मुंह के रास्ते गया, नाली से गुजरा, फिर मैदे में गया। गुर्दों का क्या इम्तिहान ले, कितना पानी अंदर गया था, गुर्दे का कोई कसूर नहीं, पानी तो ऊपर है। तो जो मेन रिसेप्टर्स है ना, वो जुबान आंख और कान और दिल और दम, ये पांच बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं, क्यामत के दिन इनकी बड़ी सख्त पकड़ है। बाकी जिसमें आपको पता है कि सैकड़ों मशीनें हैं, उनका कोई हिसाब नहीं, सेंस नहीं है। अकल से क्या सोचा, दिल में क्या तदब्बुर था, दिल में क्या मोहब्बतें थी, और इन चीजों से क्या काम लेते हो। तो किरदार साजी का अगला नुकता, पहला क्या था, तौहीद, दूसरा था रिसालत, तीसरा था ईमान बिल आखिरा, चौथा पढ़ लिया माँ बाप के साथ बेहतर ताल्लुक। मैं और आप अपने इन सारे मेयारों को परखेंगे अगर हम अल्लाह से कुछ लेना चाहते हैं तो पांचवी चीज समा बसर और दिल का सही इस्तेमाल। पूछिए, मेरे कान वही सुनते हैं जो सुनना चाहिए, मेरी जुबान वही बोलती है जो बोलना चाहिए, और मेरी आंखें वही देखती हैं जो देखना चाहिए। अगर अभी तक मेरी इन तीन चीजों में कमी है ना, मेरे कामों में कमी होगी, मेरी नमाज में कमी होगी, मेरी इबादत में खुशू नहीं होगा, इबादत नहीं ऐसी होगी। तो किरदार वैसा हो, आंखों से दिखाई अच्छी चीजें, लेकिन ऐसी चीजें नहीं कि जो आंखों को गुनाहगार कर दें। तो आपने, मैंने अपनी किरदार साजी की लिस्ट में ये चौथा नुक्ता लिखना है और फिर इस पे गौर कीजिए। और मैंने देखा है कि उन सिस्टर्स को टाइम नहीं मिलता जो कई कई घंटे टीवी के सामने फिल्में और ड्रामों में दिन का हिस्सा गुजार देती हैं और शाम को मर्दों के घर आने के वक्त में किचन में घुस जाती हैं, बरकत टूट जाती है। और मैंने देखा है कि वो सिस्टर्स जो सोने जागने की रूटीन को ठीक नहीं रख पाती, वो कभी भी फारिग नहीं होती। तो टाइम मैनेज करता है ना, तो आज आप इस बात पे सोचिएगा, मेरा ज्यादा वक्त मेरी आंखें कुछ देखने में तो नहीं लगा देती, और कान कुछ बातें और घंटों के एतबार से एक एक घंटे की लंबी फोन कॉल उसमें पूछती क्या हूँ और बातें क्या करती हूँ, और दिल में अरमान तमन्नाएं ख्याल बिल्कुल पाक करना है अपने आप को। मैंने आपने साफ बर्तन, शीशे का क्रिस्टल क्लियर हार्ट, शफाफ आंखें, और बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि वैक्स फ्री कान। फिर देखिए किरदार वो बनेगा, थोड़ा भी करेंगे ना बरकत ज्यादा होगी, थोड़ा बोलेंगे असर बहुत होगा, थोड़ा सा ही सुनेंगे दिल में उतर जाएगा। ये हमने सारे जो इर्द गिर्द वैक्स लगाए ना, ये हमारी हर इबादत और हर नेकी के काम की असल रूह को मांझ लेते हैं। अल्लाह ताला मेरी इसलाह कर दे और आपकी भी इसलाह कर दे। फरमाया, तुम्हारे गिर्दोपेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं, हमने अपनी आयात भेजकर बार बार तरह तरह से इनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाए। देखिए हर मौजू कई कई बार कुरान में आता है ना। मुझसे भी किसी ने कल पूछा कि हजरत मूसा का किस्सा क्यों बार बार आता है, बातें तो वही हैं। मैंने कहा भी आप तर्जुमे में सुन रही हैं ना, तो आपको वाकई मूसा और बनी इसराइल का किस्सा बार बार एक ही लग रहा है। जब अल्लाह ने आपके नसीब में किया और आप डिटेल से सुनेंगी, हर जगह डिफरेंट सिनेरियो है, पीछे क्या आयतें थी, आगे क्या आयतें आ रही हैं, उसके हिसाब से वाक्य चलता है। लेसन फर्क है, कहीं तबलीग का रंग है, कहीं सियासत की बात है। तो ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बेतुकी बात कर दी है, नाउज़ुबिल्ला। तो बिल्कुल यही बात याद रखे कि बार बार समझाना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें हजार बार कहा है। सच बताए हजार बार कहा होता है क्या? ये झूठ नहीं है क्या? ये जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं है? सुबह से बैठी नहीं, सुबह से खड़ी हूं, सच है कि झूठ है? झूठ है ये। तो ये जुबान और कानों और हाथों का इस्तेमाल, सोचिएगा, ये छोटे छोटे झूठ और ये छोटे छोटे मुबालगे हमारे किरदार को दाग दाग कर देते हैं। मैं कहती हूँ अगर आज के दौर में कोई सहाबी आ जाए, लोग कहेंगे एथिक्स इसको सीख कहते हैं, इसके चलने से फिरने से देखो। आज हम इतनी कोशिश करते हैं बच्चों को एथिक्स सिखाएं, इखलाकियात सिखाएं, थैंक यू बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन अमली तौर पे देखें बच्चे इंतहाई बदतमीजी करते दिखते हैं, शोरगुल कितना है, चीखो चुंगार कितनी है। किरदार नहीं हम बना रहे अपने बच्चों का, सिर्फ खिला रहे हैं और सिर्फ लाड देख रहे हैं और पहना रहे हैं और उनको बिगाड़ रहे हैं। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। फिर क्यों ना इन हस्तियों ने इनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इलाही का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो इनसे खोए गए थे और ये था इनके झूठ और इन बनावटी अकीदों का इंजाम जो उन्होंने घड़ रखे थे। वही सरफना इलाही का नफर मिनल जिन्नील कुरआन। अब आगे एक वाक्य आ रहा है, पढ़ते हैं फिर थोड़ी सी बात करेंगे इस पे, और वो वाक्य भी काबिल जिक्र है। जब हम जिन्नों के गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने, जब वो इस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ। नोट करें, कुरान सुनने का अदब जिन्नों को ज्यादा अच्छा पता था, और सूरत अल अराफ की आयत पे ये अमल ज्यादा करते दिखते हैं कि अनसितु, खामोश रहकर सुनो। कुरान ने, कुरान समझ ही तब आता है जब खामोशी हो, बाहर भी और अंदर भी। आप कहेंगे बाहर की खामोशी तो समझ आ रही है, आवाज ना आए, सेलफोन बंद हो, खांसी ना आए और विस्पर ना हो, सफ़े पलटने की आवाज ना हो, ये अंदर की खामोशी क्या है? सोचों को भी भटकने से पाक करो। जब आप इस क्लासरूम में आए ना, तो अपनी सोच को बस इस चार दीवारी में रखें, तो अपने आप को बाउंड किया करें, कुछ ना सोचें। कई आपकी आयतें सिर्फ किसी सोच की नजर चली जाती हैं, ऐसे कुछ सोचने लग जाते हैं। तो कोशिश किया करें डिस्ट्रैक्शन से बचें। कोई चीज दिख भी रही हो जो अट्रैक्ट कर रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब कोई पीछे गुलदान रखा है कुछ है, आप सोचें ये मेरा इम्तिहान है। क्योंकि नमाज में जैसे आगे इधर उधर नहीं देख सकते, नमाज में अगर ऊपर देखें तो नमाज टूट जाती है। इसी तरह इस क्लासरूम से आपने मैंने अपनी किरदार साजी करनी है। फिर दूसरी बात देखिए कि जिन्नों ने क्या कहा, फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा है, हमारी कौम के लोगों, हमने किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल की गई, तस्दीक करने वाली है, अपने से पहले आई हुई किताबों की रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। है हमारी कौम के लोगो, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल कर लो और इस पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा देगा। और जो कोई अल्लाह की तरफ बुलाने वाले यानी दाई की बात न माने, वो न जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे यानी मजबूर कर दे, और ना इसके कोई ऐसे हामियों सरपरस्त हैं कि अल्लाह से इसको बचा लें, ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ये चंद आयात नबी सल्लम के सफरे ताइफ से वापसी पे नाजिल हुई। मक्का में तबलीग का हक अदा किया, हर किस्म के हालात में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, पीछे नहीं हटे, मुखालफतें आजमाइशें तकलीफें सब कुछ सही। दिल में ख्याल आया कि शायद ये जगह ठीक नहीं है काम करने की। मिसाल देखिए ऐसे ही कि आप किसी जगह क्लास शुरू करते हैं, पूरी कोशिश कर लेते हैं, कोई आता ही नहीं है, या आटे में नमक के बराबर, तो फिर आप सोचते हैं कि शायद ये जगह ठीक नहीं, शायद ये लोकेशन ठीक नहीं, शायद ये वक्त ठीक नहीं, चलो दूसरी जगह कोशिश करते हैं। यानी इंतहाई फितरी बात है, यहाँ से अल्लाह के नबी की बशरियत भी दिखती है। आपने कहा कि मैं ताइफ जाता हूँ। ताइफ ऐसे ही था उस दौर में जैसे आज के दौर में मरी और सवात पाकिस्तान वालों के लिए, कि अमीर लोग वहां जाते थे, लोगों के रिजॉर्ट्स होते हैं, वहां जाके गर्मी गुजारते हैं। तो ताइफ की सरजमीन चूंकि बड़ी शादाब है तो वहां बड़े अमीर लोग रहते थे। आपने सोचा कि अगर ये सरदार मान गए तो ये दूसरों को भी मनवा लेंगे, ट्रेंड सेटर्स थे और पैसे वाले लोगों को लोग हमेशा फॉलो करते हैं। बड़ी उम्मीदें लगाकर आप गए और किसको साथ लेकर गए? अपने एक साथी हजरत जैद को, गुलाम मुंह बोला बेटा कह लें और साथ शागिर्द भी था, वही मूसा और खिजर का जो किस्सा था, या मूसा और यूसुफ बिन नून थे, इधर आपके साथ जैद थे, तनहा नहीं जाते थे। मक्का से शहर ताइफ तक कैसे गए होंगे? कोच पे, ट्रेन पे, गाड़ियों पे, तन तनहा पैदल? इतनी वॉक की, इतनी मुश्किल सही, और रास्ते में कुछ स्नैक्स थे, कोई होटल था, कोई मोटल था। कभी सोचें तो सही, किन हालात में मेरे नबी ने दीन का काम किया? आज मैं इन हालात में कर गई तो समझिए सत्ते ही खैरा। जो फितनों में, जो आजमाइशों में, जो मजबूरियों में टिक गया वो सोना बनेगा, वो कुंदन बनेगा, वो हीरा बनेगा। और जो अपनी छोटी छोटी मुश्किलें और छोटे छोटे अपने दिमाग के अंदर कीड़े डालकर दीन से हटा, याद रखिए वो महरूम है, वो महरूम है, वो महरूम है। पूरे यकीन से कह सकती हूँ, शैतान आपको मुझे महरूम करना चाहता है। ये तो मेरे लिए बड़ा आजमाइश है कि मैंने आपको इधर पढ़ाने की नीयत की और ये सारा हॉल भर गया। बड़े तपाक से हम इंतजाम करते इधर आपके बुलाने का और इधर चार छह लोग बैठे होते, असल आजमाइश होती। लोग कहते ज्यादा लोग होते हैं तो संभालना मुश्किल होता है, मैं कहती हूँ आपको पता ही नहीं है, थोड़े लोग होते हैं तो ज्यादा बड़ी आजमाइश होती है। दिमाग ही हवाओं में उड़ता है, शायद हमारे नसीब में ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी आजमाइशों को देख कर नीयत नहीं बदलते थे, राय नहीं बदलते थे, स्ट्रेटेजी बदल लेते थे। खैर चले गए, इखलास के साथ निकले। यहाँ असल में जो सबक है वो क्या है कि इखलास पैदा कर लीजिए। आपके सामने नहीं, आपके बाद खैर बहुत आएगी, एक एक कदम अल्लाह ताला लिखेगा। चले गए लेकिन वहां से क्या मिला? फूल मिलने तो दूर की बात है, आपके साथ बहुत बुरा मामला किया। कि हजरत आयशा सिद्दीका जो आपकी बड़ी लाडली बीवी थी, एक दिन बैठी आपसे प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी, अल्लाह के नबी आपके ऊपर ओहद से भी ज्यादा कोई सख्त दिन गुजरा है, क्योंकि ओहद हजरत आयशा की मौजूदगी में हुई थी। तो उन्होंने देखा कि बड़ा तकलीफ का दिन था, अल्लाह के नबी का दांत टूट गया, 70 सहाबा शहीद हो गए। कहा कभी आपकी जिंदगी में ओहद से भी मुश्किल दिन आया? फरमाया पूछा कौन सा? कहा ताइफ का दिन। طائف کا دن میری زندگی کا اس سے بھی مشکل دن تھا. دیکھیں نا جسمانی مشقت، گرمی، سفر پیدل، اور پتھر انہوں نے مارے ظالموں نے کہ جوتوں میں خون چپک گیا. آپ اپنے پاؤں کو اور اپنے جوتے کو ذرا دیکھیے گا، کتنے نرم جوتے ہیں ہمارے، جن جوتوں پہ چل کے ادھر آتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں جی بڑی نیکی کر کے آئے ہیں، یہ کیا تیر مارتے ہیں ہم. جوتے میں خون چپک گیا لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، اپنے اوباشوں کو اور گندے لڑکوں کو لگا دیا کہ اس کا مذاق اڑاؤ. آج ہم ذرا سے اسلام پہ بات کریں کہتے ہیں دیکھو نہیں مذاق نہیں اڑوانا، اور مذاق اڑوانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سیریس ہیں اور آپ سچے ہیں. بہرحال وہاں ایک غلام نے آپ کو پہچان لیا، اس نے آپ کی تھوڑی مدد کی، انگور وغیرہ دیے، لیکن جب آپ وہاں سے اب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پلٹے، جب آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی زبان پہ وہ دعائیں تھیں اللہم الیک اشکدا فقوتی وکلتہی لتی وحوانی علی الناس، دعائے مستضعفین کے نام پہ موجود ہے، چاہیں گے تو آپ کو بھیج دیں گے، سیرت پڑھیں گے آپ تو اس میں تو آپ خود بھی سیکھیں گے یہ دعا کہ اللہ میں اپنی کمزوری اپنی عاجزی کا شکوہ تیرے سامنے کرتا ہوں، الہ من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے، الہ عدوبن، کیا تو مجھے دشمن کے حوالے کرتا ہے کہ جو ضروری مجھے تکلیف دے گا. یعنی اس دعا کا ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے کہ اس میں سے خون ٹپکتا ہے، آنسو گرتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے. اللہ نے اس کے بدلے میں دیکھے یہ تحفہ دیا. آپ واپس آ رہے تھے نخلا نام، بالکل مدینہ کے پاس جگہ، وہاں تھک کے بیٹھ گئے. جب آپ وہاں بیٹھے اوپر سے جنوں کا ایک ٹولہ جا رہا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کا قرآن سنا اور یہ سارا واقعہ سنا کہ انہوں نے جا کے جنوں کو بتایا کہ آج ہم وہ قرآن سن کر آئے ہیں اور دیکھو دائی دین کی بات کو مانو. پھر جنات اللہ کے نبی کو لے کر گئے اپنی جگہ پہ، اتنی جنوں کی بستی مسلمان ہو گئی. اللہ نے دکھا دیا ایک در بند 100 در کھلا. بعض دفعہ اللہ مدد وہاں سے لے آتا ہے جہاں سے بندے نے سوچا نہیں ہوتا. تو پیغام اس میں پھر کردار سازی کا نیکسٹ نقطہ، پانچواں نقطہ ہوگا نا، اخلاص پیدا کریں. اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوششیں ضائع نہیں ہوتی، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی طرح جس کو کہیں کہ نتائج سے بالکل ناکامی دکھ رہی ہے لیکن اللہ نے اس کو قبول کر لیا. آگے پھر تھوڑا سا کائنات پہ غور و فکر. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور کہ ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، کیوں نہیں یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، بتاؤ یہ خواب ہے یا حقیقت ہے، کیا ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. وہاں جا کے کہہ رہے ہمارا رب، دنیا میں کہتے تھے دیر از نو گاڈ. اللہ فرمائے گا اچھا اب عذاب کا مزہ چکھو اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. یعنی وہاں جا کے نتارا ہوگا کہ کس نے کس کو جھٹلایا اور کس کو فائدہ ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں پیغام دیا جا رہا ہے فصبر. دیکھیں نا وہ سارا طائف کا سفر یاد کرے کتنا دل ٹوٹا ہوگا، اور کتنی امید تھی کہ اللہ کے نبی بدگمان ہو جاتے اللہ سے بھی، اور کتنی امید تھی کہ حضرت زید آپ سے بدگمان ہو جاتے، مجھے کیوں ساتھ لائے تھے جب ہونا ہی کچھ نہیں تھا، اور ایسے ہی بس آپ جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں اور بس آپ نے یہ کر دیا اور دیکھے نتیجے کچھ نکل نہیں رہے، خام خواہ وقت اور پیسے کا زیاں. یاد رکھیے عقل جھکانی پڑتی ہے، زبان بند کرنی پڑتی ہے، کان کھولنے پڑتے ہیں اللہ کے راستے کے دائی بننے کے لیے. اس لیے اپنے نبی کو اللہ تسلیاں آسمان سے دے رہے ہیں، بس اے نبی صبر کرو. جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، عزم والے حوصلے والے بڑے سٹرونگ رسولوں نے جیسا صبر کیا آپ بھی کیجئے. اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جب واپس آ رہے تھے وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام آگے کہا اللہ کے نبی پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اشارہ تو کرے، میں یہ وادی طائف کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یوں مسل نہ دوں. کہا نہ 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 ایسا نہ کرو، تمہیں کیا پتا کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ کوئی ایسا بچہ پیدا کر دے کہ جو اسلام کی طرف آ جائے. یہ دعا کرے، یہ نہ کہا کرے کہ اللہ کافروں کو ہلاک کر، یہ کہ اللہ ان کافروں کو اسلام دے اور یہ اسلام کے لیے کام آئے. سارے کافر ہلاک ہو گئے تو ساری انڈسٹری ہلاک ہو جانی ہے، مسلمانوں کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ ناسا کو چلا سکے اور وہ ایپل کمپنی اور وہ مائکروسافٹ کو چلا سکے. یہ دعا کرے کہ اللہ ان کو اسلام پہ لے آئے اور یہ اسلام کے لیے ٹیلنٹ لگنے لگ جائے. اور اللہ کے نبی کا وہ صبر کہاں کام آیا، ہم پاکستانیوں کے حصے میں آیا. وہاں سے اٹھے تھے محمد بن قاسم، طائف سے اٹھے تھے اور سندھ فتح کر گئے. اگر اس دن اللہ کے نبی یہ معاملے میں جلدی کر جاتے تو پتہ نہیں پھر ہم بھی آج بیٹھے ہوتے. تو لہٰذا کبھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے, کبھی کسی کے بارے میں برائی نہ کہیں, یہ کہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے, تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے. بات پہنچا دی گئی, اب کیا نافرمانوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ یعنی اللہ کہتے ہیں میسج از کنویڈ, اب جس نے نہیں ماننا اس کی مرضی, جس کو ماننا ہے وہ مان لے. تو یہ ساری بات سے کیا پتا چلا؟ اللہ نے حجت پوری کر دی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ آخر میں جو بات کہہ دی نا بلاغ, اگر آپ دیکھیں نا تو لفظ بلاغ ہے بس, کوئی یہ نہیں کہ بلغ, حکم نہیں ہے, امر نہیں ہے, بلاغ پہنچا دینا. آج میرے آپ کے لیے بھی یہی کام ہے, بلاغ پہنچا دو, حجت تمام کر دو. اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اسلام کی خوبصورت تصویر بن کے دکھاؤ. جہاں دلائل دینے پڑے دلائل دو, جہاں قرآن دینے پڑے وہاں قرآن دو, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بتانی پڑے وہ بتاؤ, لیکن کوشش پوری کر لو, پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. آج میں اور آپ اپنے اوپر لیں, ہماری سوسائٹی, ہمارے مسلم بہن بھائی, کیا ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ کے نبی بلاغ کا کام کر گئے تھے؟ ابلاغ کا کام ہو گیا تھا ادھر؟ آدھا پونا دین لے کر آج ہم بیٹھے ہوئے, پورے معاشروں میں دیکھ لیجئے, الا ماشاء اللہ کیا ہوا, دوسروں سے تو بہتر ہوں, چار تو پڑھتی ہوں, کیا ہوا اگر پانچویں نہیں پڑھتی؟ اچھا کیا سب کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے, آدھی پونی نیکیوں پہ راضی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تک دین ابھی پورا نہیں پہنچا. اس پورے دین کو لینا ہے. جب قرآن کا نور زندگی میں چمکتا ہے نا, تو پھر احساس ہونے لگتا ہے اتنے گناہ تھے میری زندگی میں, ہائے میں نے ہاتھوں میں سانپ پکڑے ہوئے تھے, اندھیرے میں تو سانپ اور رسی کا فرق بھی نہیں پتا چلتا. تو پھر انشاءاللہ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ لوگوں تک پہنچانا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے. تلاوت سنتے آخری آیتوں کی, اور جو پانچ نقطے اس سورت سے نکلے ہیں کردار سازی کے, اس کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.